நாராயண 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 ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண யண ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண ஆனந்தமய ஆனந்தமய பூரணானந்த பூரணானந்த பாரானந்த் சாந்தானந்த் கனானந்த் அச்சலானந்த் த்ருவானந்த் நித்யானந்த் போதஸ்வரூபானந்த் ஞானஸ்வரூபானந்த்.
அப்ப தீசரி பார் பரனே லகா இத்தனை மஹி தோ ராஜா கி ஃபோஜ் கே ஜோ ஆபனே தீக்ஷண் சல்லனே வாலி படி வேகசாலி கோடே தே வே சோ ஆ பஹுஞ்சே ஜல் லேகர் கே கே ठंडा ஜல் ஏக் பிரகார் சே போலே மஹாராஜ் ஜல் பியோ ஜல் பியோ. இத்தனை மே ராஜா ஜல் வசூல் பீலியா ஜோ ஜல் ஃபோஜ் கி ஆதமி ஆதமி லாய் தே உஸ் ஜல் கோ விரக்ஷ ஜல் டபகதா தா நீ பியா கிந்து ஆதா பியாலா பர் கயா தோ ராஜா நே கஹா ரே தேகோ தோ சஹி இஸ் விரக்ஷ பர் சே ஜோ ஜல் ஆதா ஹை இஸ்கா க்யா ஹேது ஹை ஜல் கஹா சே ஆயா விரக்ஷ கே ஊபர் தோ உஸ்கி ஆதமி ஜாகர் தேக்னே லியே தேகா தோ ஏக் படா சாப் அஜ்கர் உஸ்கே ஊபர் படா உஸ்கே முக் சே லால் பட் ரீ ஹை மனே விஷ் பட் ரஹா ஹை உஸ் ராஜா நே சோச்சா கி ஜித் யே மே விஷ் பீ ஜாதா தோ மர் ஜாதா तो मेरे बाज पक्षी ने तो मेरे प्राण बचाने की चेष्टा की थी नहीं कि मुझको मार दे। फिर वो राजा बाज पक्षी के लिए पश्चाताप किया रोया किंतु वो तो मर गया तो मर गया। तो कहा कि हे ठगनी जिस प्रकार से ती राजा बाज पक्षी को मार करके पिस्ताया था उसी प्रकार से तू मुझको मार करके पिस्तावेगी इसलिए एक प्रकार से मुझको मारना नहीं चाहिए। तब उस ठगनी ने कहा कि मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा या तो तू चार लाल दे दे अग्नि तो तुम्हारे को मैं निश्चय ऐसा मारूंगा। फिर उसने कहा कि तेरी कुछ ही मार डाल। जब वो मारने के वास्ते प्रस्तुत हुई तो फिर उसने कहा कि देखो जिस प्रकार से थी एक बंजारा एक कुत्ते को मार करके पश्चाताप किया था ऐसे ही तू मुझको मार करके पश्चाताप करे। उसने पूछा कि भाई बंजारा कुत्ते को मार करके कैसे पश्चाताप किया था या कहीं भी तू मुझको सुना दे। तो दूसरी कहानी सुनाने लगा वो बुद्ध जो है। बोले एक बंजारा था उसके पास में एक कुत्ता रहता था। वो बहुत ही शिक्षित था बहुत शिक्षित था। बंजारा जो है माल लाद कर एक गांव से दूसरे गांव बेचा करता था। तो उसको कुछ रुपया की जरूरत पड़ गई तो एक महाजन से कहा कि आप 400 रुपया मुझको दे दो और मैं ये कुत्ता आपके दाने रख देता हूं। कुत्ता जो है सो हु कूकता रहा किंतु कोई उठा नहीं। फिर कुत्ते ने जो रात का वक्त था ज्यादा पड़ता था लोग जो शोर ओढ़े हुए थे उस शोर को पकड़ पकड़ के बार बार खींचता है बल्कि कहीं कहीं से छोड़ फाड़ भी गई किंतु सब लोग उठना चाहते ही नहीं। तो चोर जो है उसे आभूषणों को चुरा करके ले गए। अब ले गए तो कुत्ता उनका पीछा किया। अब वे चोर हमारे देश में बाली के चीवे होते हैं उसको हम बाली के धोरे भी कहते हैं। तो वे धोरों के मन ले जा करके और एक आध खाड़ा खोद करके उस गहने के डिब्बे को वहां गाड़ दिया। गाड़ करके वे चोर चले गए तो कुत्ते ने देखा कि फिर मैं भूल जाऊंगा। तो जहां वो गाड़ा गया था वहां समझो कि आपने टट्टी बैठ करके और पेशाब की एक कार लगा दी चारों तरफ निशानी कर। देखो मेरी टट्टी पड़ी रहेगी तो शायद को इसके नजदीक आएगा ऐसा निशाना कर करके और कुत्ता शहर के वापिस आ गया। प्रातः काल हुआ तो घर वालों ने कहा कि रात को चोरी हो गई चोरी हो गई। अब 1000 रुपयों का माल चला गया बढ़िया बढ़िया गहना हीरे के बहुत से गहने पन्नों के गहने और मोती के गहने भी चले गए और चारों रीतियों की चेन चली गई। अब चारों तरफ दो धूप करे संजय की थाने में भी खबर दी, किंतु चोर चंपत हो कोई पता नहीं। और कुत्ता से हु करता है। लोगों ने कहा कि रात्रि में कुत्ता बहुत ही हल्ला मचाया हु करता था, इसे मालूम होता है कि चोर रात में ही घुस गए थे। दूसरे ने कहा कि हमारी तो सोरी फाड़ गई ये कुत्ते ने। अब उसके समझ में यह बात आई कि चोर रात में चोरी करते थे और ये कुत्ते ने जगाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हम लोग कोई उठे नहीं, तो चोर है तो दम ले करके संपत हो गए। किंतु कुत्ता फिर भी हू करके के दौड़ता है उस रास्ते से, तो कहता रही ये कुत्ता रास्ता बतलाता है चोर जागे। अच्छे बुद्धिमान आदमियों ने ये बात तारी तो बोला ये कुत्ता जहां तक जाए उसके पीछे पीछे जाओ। तो दो आदमियों ने उसका पीछा किया। अब थोड़ी दूर चलता है अगर हु करता है तो लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा ही करता है। बोल नहीं, जाना चाहिए जहां तक ये जावे, कोई बिना कारण ऐसा नहीं करता। फिर आखिर में उसके पीछे पीछे गए तो वो उसी घोड़े पर गया कि जहां वो धन गड़ा हुआ था। थोड़ा आगे दौड़ करके केर अपने पंजों से अपने टट्टी तो दूर कर दी और उसे डब्बे को अपने खोद कर करके निकाल करके बार में रख दिया। अब उसके साथ में जो दो भाई गए थे उन्होंने वो समझो कि गहने का डब्बा मिल गया। वो डब्बा ले आए, खोल करके देखा तो सारा गहना उसके मां मिल गया। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने एक प्रकार से कहा कि भी आज हमारे 400 रुपए का 1000 रुपए हमारे सफल हो गए। आज एक पत्थर के बीच के मां ये लिख करके बंजारे के पास में भेज दिया कि आपका कुत्ता बड़ा बुद्धिमान और बड़ा समझो कि आपने शिक्षित है। हम जो 400 रुपए तुम्हारे को जो दिए थे वो इसे कुत्ते की कार्रवाई से हमको 1000 रुपयों का लाभ हो गया, इसलिए हम 400 रुपये इसे आपको इनाम में छोड़ देते हैं, लेना नहीं चाहते। वो खाता बराबर कर दिया है, इसे कुत्ते की अपने बुद्धिमानी के ये 400 रुपये हम आपको देते हैं, 1000 रुपये हमने लाभ किए। ठीक है, वो पत्र लिख उस कुत्ते के गले के बंद। अब वो कुत्ता बिनजारे के पास में पहुंचा, दूर से उसको आता हुआ देख करके कह रहे कमगत, मैं तुम्हारे को डाने रखाया था तो बिना रुपया चुकाए तो क्यों आया। अब कुत्ता तो बोलना जानता नहीं, तो उसके पास एक लठ पड़ा था, उस लठ से उस कुत्ते को मार डाला। कुत्ते को मारने के बाद उसके गले के बंधा हुआ जो कागज है वो खोल करके पड़ा। फिर पैसा काम करने लगा कि 1000 रुपयों का गहना जो चोर चुरा कर ले गए थे हमारे शेर को वो मिल गया, और ये तो बधाई देने के लिए आया था और मैंने बात का चार किया, ये तो रुपया उनका चुका करके ही आया। अब उस कुत्ते के लिए वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, किंतु कुत्ता तो मर गया सो मर ही गया। अब पश्चाताप करने से क्या गर्व करे, तो कहता कि देख ठगनी, उस बंजारे ने कुत्ते को मार करके घोर पश्चाताप किया, इसी प्रकार तू मुझको मार डाला गया तो तेरे को भी घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, तेरी कुशी मार डाल। बोला तू तो इस प्रकार से थी बात बना बना करके समय बिता रहा है, किंतु मैं तुम्हारे को छोड़ूंगी नहीं बिना 4 लाख दिए, या तो तुम 4 लाख दे दो नहीं तो मैं मार डाल। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई लाल है ही नहीं, दे दू कहां से, चाहे तेरी कुशी मार डाल। फिर वो मारने के वास्ते तैयार हुई। फिर उसने कहा कि देख, जैसे एक भाई ने अपनी स्त्री की हत्या करके पश्चाताप किया था, इसी प्रकार से तू भी मेरे को मार करके घोर पश्चाताप करेगा, तेरी कुशी मार डाल। उसने कहा कि एक वैश्य भाई ने अपनी हस्ती को मार करके पश्चाताप किया, वो कैसे किया वो कहानी भी हमारे को तुम बतलाओ। तो फिर वो कहानी बतलाने लगी। वो कहानी बतलाने लगी कि एक समय की बात है कि एक वैश्य था, उसकी स्त्री थी, और उसे वैश्य का पिता और माता, ये घर में 4 आदमी थे। रात्रि में सोने के समय के बीच के मां उसको एक आवाज आई कि ये शहर के बाहर के मां शहर के अंतिम भाग के मां रहा करते थे और वहां से बहुत से खेत पड़ते थे और खेतों के मां ये गिद्ध रहते थे सियाल वो सियाल है तो खूब अपन समझो की आवाज दी और वो पक्षियों की पशुओं की सब जानवरों की बोली समझा करती थी उस वैश्य की जो आपने पुत्र बधु है वो तो उसे गिद्ध ने ये कहा कि यहाँ एक नदी के किनारे के ऊपर जो एक मुर्गा पड़ा है उस मुर्दे की जान के वहां चार लाल है तो ये आवाज सुनकर के वो 12 बजे उठी और उठ करके उस नदी के किनारे मुर्दे के पास जाने तो वास्ते प्रस्तुत हुई। रात्रि का समय था उसका ससुर जो है वो जाग पड़ा उसने देखा कि रात की 12 बजे हमारे बेटे की बहू या कहाँ जा रही है इसका थोड़ा ख्याल करना सही तो आगे आगे बहू और उसके पीछे पीछे उसका ससुर आगे जाकर के मुर्दा उसको मिल गया। अब मुर्दा मिल गया तो वह कोई हथियार तो था नहीं अपने दांत से थी अपने उसकी जान को तोड़ कर करके और चार लाल उसमें से निकाल ली और निकाल करके अपनी जेब में डाल करके अब बस वो वापिस आने की तैयारी करी। ससुर तो पहला से ही वहां से भागा अरे बोले या तो डाकनी है डाकनी मुर्दों को खाती है देखो नदी किनारे जो मुर्दा पड़ा उसकी जान को काट करके खाने लगी ये तो अपने घर के मां ही डाकनी रहती। वो बेचारा घबरा करके भाग करके अपने बिछौनों में झुसता झुसता सो गया और वो समझो कि बेटे की बहू भी आगे सो गई। उसके ससुर को रात में नींद नहीं आई कि कहीं रात में तेरे को खा नहीं जा। जब प्रातः काल हुआ तो एकांत का मौका लगा करके अपनी स्त्री से अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तेरी बहू तो डाकनी है। बोलो कैसे बोलो मैंने आंखों से देखी रात्रि के 12 बजे घर से निकली और निकल करके एक मुर्दे की जान फाड़ करके कुछ उसका अंश खाया मैं तो मारा बहका भाज कर आ गया न मालूम उसको मुर्दे के अंग को कितना खाया या प्रत्यक्ष में डाकनी है तो क्या करना चाहिए। बोलो ऐसी बात है तो न मालूम आपको कभी खा जा हमारे को खा जा डाकनी का क्या भरोसा तो इसको तो मार ही डालना चाहिए तो मारने का कोई रास्ता सोचना चाहिए। बोले यही रास्ता है कि आप गंगा जी जाने का बहाना कर लो और साथ के वहां कोई रसोई बनाने वाली चाहिए तो मेरी बहू को साथ ले जाओ जब स्नान करने लगो ना तो गहरे पानी के बीच के वहां इसको धक्का दे करके वहां डबो करके चले। तो बोले बहुत अच्छी बात। ये बात जब होने लगी तो ये सब बातें जो होती थी तो वहां भी एक कौवे ने सब बात सुन ली कि ये घर में ये विचार किया गया है इसे बहू को गंगा में डुबोने का। तो ससुर और बहू दोनों तैयार होकर के अब गंगा जी के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर गए तो वहां वृक्ष के ऊपर वो कौवा बैठा था उस कौवे ने कहा कि देखो कि यह बहू जो है सो मूर्ख है इनको ससुर तो इन्हें गंगा में डुबोने के लिए जा रहे हैं ये अमूल का है तो समझती नहीं। इतने में तो समझो कि वह बहू हंस पड़ी। हंस पड़ी तो ससुर ने कहा क्या बहू तुम मुझको ले लिया वो समझ नहीं ले लिया क्या कि तू डाकन है ना तुम एक प्रकार से मुझ पर तुम्हारा असर तो नहीं हो गया क्या तुम मुझको खाएगी। बहू ने कहा महाराज मैं क्या आदमियों को खाती हूँ। हाँ बोले आदमियों को तो खाती है मैंने देखा तू हंसी क्या। बोले मेरे हंसने का तो कारण यह है कि एक कौवा जो है यहाँ बैठा था और मैं जानवरों की बोली को जानती हूँ उसको ने यह बात कही कि तुम्हारा ससुर जो है जो तुम्हारे को गंगा जी ले जा करके गंगा जी में डबोगा। घर में इन तीनों की सलाह हो गई माने तेरे पति और तेरे सासू ससुर की ये तुम्हारे को गंगा में डबोने के लिए जा रहा तो मुझको हंसी आ गई तो आप मुझको गंगा में डबोने के लिए क्यों जा रहे हो। तब उसने कहा कि बात तो ठीक, बात यह है कि कुछ दिन के पहले, दो एक दिन के पहले रात की 12 बजे तू उठ करके नदी किनारे गई और वहां एक मुर्गा पड़ा था, उसकी जान को तू काट करके खाने लगी थी। तब हम लोगों ने ये निश्चय कर दिया कि अड्डा किन है। बोले महाराज वो तो दूसरी बात थी। वो क्या बात थी? बोले वो तो ये बात थी कि मैं जानवरों की बोली को समझती हूँ, तो वहाँ एक गिद्ध ने ये बात कही कि नदी किनारे पर एक मुर्गा पड़ा, उसकी जांघ के मन चार लाल है। तो उसकी आवाज को सुनकर के मैं नदी किनारे गई और कोई हथियार नहीं ले गई थी, तो अपने दांतों से उसकी जांघ को चीर करके मैं चार लाल में ले आई। मैं चार लाल के लिए गई थी, मैं कोई डाकिन नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई लाल कहाँ पर है? तो अपने जेब से निकाल कर दे दी कि ये चार लाल है। उसने देखा भी ये चारों लाल तो कोई 25-30 हजार रुपए की कीमत की है। तो बोला कि बात तो ये, चलो वापिस। अब गंगा जी क्या जाना है, मैं तो तुम्हारे को डबोने के लिए जा रहा था। अब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वह चार लाल लेकर के अब वो सुसरो बड़े खुश हो गए। अब बोले कि मैं तो हूँ वृद्ध और तू है जुआ, तू आगे दौड़ करके खबर दे दे कि सारी बात आगे जाकर बता दे कि इस कारण से मैं वहां गई नहीं, वापिस ही आ गई और मैं बूढ़ा आदमी आस्ते आस्ते आता हूँ। अब वो बहू आने लगी तो वह की सास अपने उस वक्त के वहां मकान की छत पर थी, उसने दूर से देखा कि बहू दौड़ती दौड़ती आ रही। तो आकर बेटे ने कहा कि बेटा तेरे बाप को तो मार डाला, वो डाकिनी जो है उसको तो खत्म कर दिया, और हम दोनों को मारने के लिए आती है और आती हम दोनों को मार डालेगी, तो तू ऐसा उपाय करिए घर में प्रवेश होने के साथ इसको तू मार डाल। तो जब वो कोली में पड़ी तो एक प्रकार से मुंह से उसकी कतर कर अकतर कर दी, वो मर गई। थोड़ी देर के बाद वो ससुरा भी आया तो बोले आप आ गए। बोले आने में क्या बात थी? बोले हम लोग तो ये समझा कि उस डाकिन ने आपको मार के आपको खा गई। अरे बोले नहीं, वो डाकिन नहीं, तो कि वो तो जानवरों की बोली को जानती थी, पशु पक्षियों की। उसने तो वो मुर्दे को एक प्रकार से खाया नहीं था, मुर्दे की जान को चीर करके चार लाल निकाली थी। अरे वो चार लाल देखो 30 हजार रुपए की कीमत की है। उसने सारी बात कही, जब आदि से अंत तक सारी बात बतलाई तो उसके लड़के ने कहा कि हम तो डाकिन समझ करके मूसलों से उसको मार डाल। बोला तुमने बड़ा सब अन्याय किया। तो उसके लिए फिर उसका पति जो है मार करके घोर पश्चाताप किया, और उसकी सास और ससुर ने भी ऐसे पश्चाताप किया और रोने लगे। फिर रोने से क्या गलत है, वो तो मरी गई। तो उसके बाद उन्होंने सबने घोर पश्चाताप किया, इसलिए उन्होंने जैसे पश्चाताप किया ऐसे तुम ही मुझको मार करके पश्चाताप करेगी। अब फिर तेरी इच्छा, तू बड़ा मार डाल। ये सुन करके कि एक प्रकार से उसके मन में ये बात आई कि आदमी बड़ा बुद्धिमान है और ये मारने मारने के वास्ते ऐसी कहानियां कहता है। तो समय समझो कि जो भोर का सा हो गया था, यानी कोई 3 पहर रात बीत गई थी, 1 पहर और बाकी थी। तो उसके मन में ये बात आई कि देखो ये बात तो शिक्षा की कहता है। और वो फिर कहने लगा कि छगनी सिंह कि तुम विचार कर, तू आदमियों की हत्या करती है, जान लेती है, पर ये धन की क्या दशा हो? तुमने ये भी कभी विचार किया कि मैं इतने आदमियों की जो हत्या करती हूँ और ये धन क्या काम में आवेगा? बोले ये तो विचार मैं कभी नहीं करती। बोले अब तो करना चाहिए, तू जो आदमियों को मार मार करके धन इकट्ठा करती है तो काम तो तुम्हारे सिर पर पड़ता है, और धन की क्या दशा होगी अभी पता ही नहीं है। तो तुम वास्तव के वहां तुम मेरी असली सच्ची क्यों नहीं बन जावे? तो उसके समझ में आया कि बात तो ठीक है, ये मेरे भाई मेरे माता पिता एक प्रकार से आखिर के बीच के माँ ये सबको धोखा देते हैं, तो मुझको भी धोखा देंगे, तो मैं इनको पहला धोखा दे दूं तो ठीक है। ये सोच करके जो समझो कि लोगों को मारकर जो धन बटोरा था, गहना और बटोरा था, वो सब उसके पास में रहता था, तिजोरी की चाबी उसके पास में रहती थी। वो बोली कि ठीक है, तो फिर मेरे पास जितना धन है वो लेकर के हम तुम्हारे शहर को चले चलें। बोले यही तो असली बात है, तो ठगोगे तब लग गए। तो उनके बाद बोला कि हमारे दो ऊंट है, एक तो समझो कि आपने रात भर के बीच के मां 50 कोस जाता है, और एक जो है 25 कोस ही जा सकता है, यानी एक तो 50 मील एक 100 मील। तो 100 मील वाला जो है ना वो तुम जाना, अंधेरी रात है, 100 मील वाला तुम जाना और 50 मील वाला नहीं जाना। तो बोला मैं कैसे पहचानूं ये 50 है 100 है, कि जो काले रंग का है ना वो तो एक प्रकार से थी आपने 100 मील चलता है, और जो सफेद है वो 50 मील चलता है थोड़ा भूरा रंग का। तो अंधकार रात्रि में वो जो भूरे रंग का है वो उसको काला काला लगा, वो लिया और उसके ऊपर वो धन लाद करके और सब जो वे दोनों ऊंट पर चढ़ करके वहां से चल दिए। प्रातःकाल हुआ तो पिता ने पुत्र से कहा खबर तो लो कि उस बटाऊ से कितने रुपए मिले, अरे वो 4 लाल मिले कि नहीं मिले। जाकर के ऊपर देखा तो वहां सब समझो कमरा खाली है, बोलो कमरा तो खाली है, बोलो गहना संभालो, बोलो गहना तो तिजोरी तो खुली पड़ी है, उसके माल बता कुछ भी नहीं है। बोला ऊंट संभालो, बोला ऊंट जो 100 मील जो रात में चलता है वो तो अभी है, और 50 मील वाला ऊंट नहीं है। तब बोले कोई डर नहीं, चलो 100 मील वाले पर, और जिस खोजों में वो गई है उसके पीछे वैसे चलो। उधर के मैं जब प्रातः काल हो गया तो वो ऊंट जो है सो भूरा भूरा दिखने लगा। तो उस असली ने कहा तुम भूरे ऊंट को लिया, बहुत गड़बड़ करी। बोले मुझको तो रात में ये भूरा भी काला ही मालूम दिया। बोले अब तो हमको धोखा हो, अब एक काम करना, हमारे पिता हमारे भाई जरूर हमारा पीछा करेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं तेरे को पहले से बतला, मैं जो हसो अब एक खड़ियंत्र रचूंगी। ये जो एक प्रकार से थी सामने जो बरगद का जो वृक्ष है ना, इस पर तुम चढ़ जाना, और जो लंबी एक डाल है उस पर जाकर के बैठ जाना, और मैं एक प्रकार से इस ऊंट से उस ऊंट पर चढ़ जाऊंगी, और ये मालमत्ता भी उस पर चढ़ा लूंगी। फिर एक आसन तो मैं बैठ जाऊंगी, ऊंट तुम्हारे नजदीक लाऊं तो तू ऊपर से कूद पड़ना, फिर यहां से हम पास है। ये अक्कल बताई। और वो एक प्रकार से रोने लगी, अपने चरित्र करने लगी कि देखो ये मुझको बांध करके लिया है, और उसे उनको अपने को वहां बंधा लिया ऊंट के ऊपर, और रोए अपने चिल्लारी मार। इतने में वे ऐसो आ पहुंचे, और वो रोती रोती बोली कि देखो पिताजी थे लोग कोई उठे ही नहीं, जागे ही नहीं, और मैं चिल्लाती रही, और ये शरीर में बलवान था मुझको उठ के बांध करके और अपना सब धन लेकर के चला। बोले कोई बात नहीं बेटी जी, अब तो हम लोग आ पहुंचे ना। बोले बहुत ठीक है। अब बोले पिताजी मैं तो उस 100 मील चालने वाले ऊंट पर बैठूंगी। बोले ठीक है, तो उसी पर अपना गहना और सब लाद कर उस पर बैठ कर ऊंट को खड़ा कर करके के, और बस उस गाछ के नीचे उठा करके आस्ते आस्ते ले गई, और वो एक प्रकार से थी उस डाल पर जाकर के पहले से बैठा ही था, और वो गाल काटने लगी कि ये हमारे ऐसा नल पीटे ऐसे अपनी मारवाड़ी भाषा में। अब एक प्रकार से रोवर उसको गालियां काले। मैं धीरे धीरे बेटी कोई बात की चिंता नहीं, अब तो मेरे दो आदमी आ गए, इसको पकड़ करके मारेंगे दंड देंगे, तू कोई बात की चिंता मत कर। वो उसको आश्वासन देते हैं, और उस ऊंट को वहां जाकर खड़ा किया, और वो एक प्रकार से फलांक मार करके उसके ऊंट के ऊपर आ बैठा। अब उसके ऊंट के मारी ठोकर को ऊंट जरा चल चल गया। अब चलती वक्त के बीच के वहां जो है उसके पिता और भाई ने कहा कि बेटी तो हमारे को भी धोखा देती है। बोला पिताजी ये बात है कि आप दुनिया को धोखा दिया और मैं आपको धोखा दिया। तो ये कह करके अरे वो चल रही आपकी है सो, अरे बोले सब मेरी तो कुमारी मैं ले जा रही हूँ, थारो के है रुपया तो मैं इकट्ठा किया था और मैं ले जा रही हूँ, आपने मुझको धोखा दिया, दुनिया को धोखा दिया, इसलिए मैं आपको धोखा दिया। ये कहकर वो चल रही, अब उपाय नहीं उसको नावड़ने का। इस प्रकार से वो अस्त्री ने लेकर के और सब धन लेकर के अपनी माता के पास अपनी अस्त्री के पास वो सो वापिस लौट करके जल्दी आ गया और धन करके वहां रख दिया। माँ मार बहुत खुश है, उनको पता नहीं कि कैसे धन ले आया, इस बात का किसी को पता नहीं। अब वो जो चार जो लाल थी वो अपने से निकाल कर करके और अपनी जो पहली की जो विवाहित अस्त्री है उसको ला करके दे। अस्त्री समझती नहीं थी कि ये क्या चीज है, वो बालकों को दे दी और बालक उससे खेलने लगे। बालकों को भी तो पता ही क्या, उसको भी स्त्री को भी मूर्ख आती कोई पता नहीं कि ये चार लाल है तो आपने समझो कि लाख रुपए की कीमत की है। वह तो समझा कि ये लाल है, बालक लोग खेलेंगे, बालक एक प्रकार से थी खेलने लगे। उस शहर के बीच के वहां एक जो है समझो कि आपने कोई वैद रहता था, वो वहां आया और आकर करके के एक देखा कि भाई उस शहर में आकर के उसके घर पर आया कोई इलाज करने के लिए। घर पर आया तो वह चारों लाल देखी और वो कीमत जानने वाला था तो वह चारों लाल लड़कों की नजर उका कर करके ले ली और झूठी जो चार लाल उसके पास में थी वो दे दी। अब एक प्रकार से थी वह चारों लाल जो है उसने खुद ने मिली तो देखा भाई ये तो नकली लाल है, असली तो कोई दे गया। तो वो पगला हो गया मैं चिंता के कारण से और कहने लगा कि ये तो है कि ये तो है और मैं तो नहीं। कोई पूछे रे क्या तुम्हारे पगला, बोले ये तो है किंतु वे तो नहीं। अभी से क्या समझे कोई दूसरा आदमी ये और मैं क्या है, कोई नहीं समझा। तो वह ठगरी जो है वह बड़ी चतुर थी, उसने ये बात ताड़ी कि इसका जो कुछ धन लाल था वो किसी ने चुरा लिया और बदले में खराब लाल रख दी। तो उसने पूछा कि कोई यहाँ आया था, तो अनाम सनाम कर करके ये मालूम हुआ कि भाई अमुक एक प्रकार से थी बैद आया था। ठीक है, योग से थी वो वैद भी ऐसा बीमार पड़ गया। तो यह ठगड़ी जो है अपने वैद बनकर के उसके घर के ऊपर गई, वहां जाकर के और उसने वह चारों लाल उसके वहां देखी। तो वह चारों लाल वैद्य ने वो उठा ली, उठा करके उसकी जगह वो जो खराब जो लाल है मैंने झूठी जो उसकी थी उसकी वहां रख दी। अरे ये चारों लाल असली लेकर घर के ऊपर आ गई। तो एक प्रकार से थी वो देखा कि भाई ये चारों लाल वह तो नहीं है दूसरी है, तो वो भी पागल हो गया। उस चिंता से पागल होकर के वो भी वैसे भगने लगा कि ये तो है किंतु वह तो नहीं, ये तो है किंतु वह तो नहीं। अब घर वाले की तो समझते नहीं, ये चार लाल ला करके अब वो ठगनी विचार करने लगी कि देखो ये ही चार लाल है जो मुझको खबर मिली थी कौवे के द्वारा। उस चार लाल में लेकर के वो जो पागल हो रहा है उसके सामने एक लाल रखी, चार में एक रखने से उसका मिजाज किछु फिरा। बोलो एक तो है किंतु तीन तो नहीं। तो घरवाले बोले कि इसकी आवाज फिरी है तो संभव है कि ये पागलपना मिट भी सकता है। दूसरे दिन एक और रख दी तो बोले दो तो है किंतु दो तो नहीं। तो तीसरे दिन तीसरी रख दी, ऐसे चौथे दिन चौथी रख दी, तीसरे दिन बोलने लगा कि तीन तो है किंतु एक तो नहीं, और चौथे दिन वह चौथी रख दी, बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मिजाज ठिकाने आ गया। और चारू लाल उसको मिल गई, उसने कहा कि देख मैं तो तेरे को इतनी तकलीफ दी तभी तू चार लाल नहीं दी, अरे इस मूर्ख के हाथ में सौंप दी जिसको ज्ञान नहीं है, अरे अपने बच्चों को सौंप दी, अरे ये चारू लाल दूसरे के हाथ चली गई। लेकिन उसे ये तो उसकी पात्र नहीं थी। अब बोलो कि बात तो ठीक है तेरे कहें, वह चारू लाल में ठगनी कोई दे दी के तू ही रहा कर। अब शहर के मां यह बात फैल गई कि इनके जो नई बहू आई है या कैसे भी कोई पागल हो जिक्र ठीक बना।